आप हैं SBS हिंदी के साथ।
शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। विक्टोरिया में बेहद खतरनाक हवा में सांस लेने को मजबूर हैं लोग। भारत में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची केरल सरकार। और धुएं की वजह से टला ऑस्ट्रेलियन ओपन का क्वालिफाइंग दौर। और अब समाचार विस्तार से। विक्टोरिया के लोग आज दुनिया के सबसे खराब वायु प्रदूषण का सामना कर रहे हैं। इसकी वजह राज्य के पूर्व में और न्यू साउथ वेल्स में कई जगह लगी आग है। गिप्सलैंड में फैली आग की वजह से धुएं का एक मोटा आवरण मेलबर्न से लेकर जिलोंग तक फैला हुआ है। लोग अपने घरों के अंदर रहने पर मजबूर हैं, वो भी फायर अलार्म बंद करके। विक्टोरिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सुटन सबसे कह रहे हैं कि जितना हो सके धुएं से बचें।
The vulnerable groups that we're most concerned about are children 14 and younger, people 65 years and older, and those with pre-existing medical conditions, heart disease, lung disease, or even diabetes. Those individuals need to make sure that they have a plan in place to look after their health.
ग्रीन पार्टी के मेलबर्न से MP एडम बेंट ने सरकार से जलवायु परिवर्तन के लिए ज़्यादा कारगर कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन को जलाना जल्द से जल्द बंद करना होगा।
This isn't the kind of Melbourne and Australia that I want, but this is what the climate emergency looks like, and it's happening because we're burning coal at the rate of knots, and it could get even worse than this.
बुशफायर की राज्य स्तरीय जांच की घोषणा करके विक्टोरिया भी न्यू साउथ वेल्स के साथ आ गया है। इस जांच के दो भागों में बुशफायर के सीजन के लिए राज्य की तैयारियों और प्रतिक्रियाओं की समीक्षा होगी, जिसमें $2.5 million की रकम खर्च की जाएगी। ये बातें उस वक्त में सामने आ रही हैं जबकि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन बुशफायर पर रॉयल कमीशन की जाँच बैठाने को लेकर संसद में एक प्रस्ताव की तैयारी कर रहे हैं। विक्टोरिया के प्रीमियर डेनियल एंड्रूज ने कहा है कि केंद्र सरकार की जांच उनके लिए बहुत स्पष्ट नहीं थी, इसलिए विक्टोरिया सरकार ने अपनी जांच कराने का फैसला लिया है।
I had a conversation just a couple of days ago with the Prime Minister about a couple of different things. One of them was the Royal Commission. He's still working through exactly what sort of inquiry he prefers, and he's got to go through his own cabinet process.
केंद्र सरकार ने कहा है कि आग से प्रभावित किसानों और उत्पादकों को जल्द ही $75,000 तक की राशि का अनुदान मिलेगा। ये पैसा सरकार की $2 billion के रिकवरी फंड से दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि इससे किसानों के को शेड बनाने में, बाढ़ बनाने में और इसके अलावा भी दूसरे अपने उपकरणों को ठीक करने में मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ब्रिजिट मैकेंजी ने कहा कि सरकार चाहती है कि किसान फिर काम शुरू करने के लायक हो जाएं।
Today is the first step on what's going to be a long journey. Our farmers want to get back growing food and we need them to get back growing food. So we're with them all the way.
खबर अंतर्राष्ट्रीय। कनाडा के सुरक्षा बोर्ड ने पुष्टि की है कि ईरान ने मिसाइल से गिराए गए यूक्रेन के यात्री विमान की जांच प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दे दी है। पिछले हफ्ते तेहरान एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद यूक्रेन के इस विमान को एक मिसाइल ने मार गिराया था। इस विमान में 176 यात्री सवार थे, जिनमें 57 कैनेडियन थे। कनाडा के परिवहन सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कैथी फॉक्स ने कहा कि हालांकि वो अभी ये नहीं जानती कि कनाडा के जांचकर्ताओं की पहुंच कहां तक होगी, लेकिन ईरान ने सहयोग करने के सकारात्मक संकेत दिए हैं।
I also want to stress that so far the Iranian AAIB has responded in compliance with international protocols. And furthermore, there have been early signs that Iran is allowing the TSB to play a more active role than normally permitted. We all want answers, and sharing information is a cornerstone of trust. The world deserves to know how and why events unfolded as they did.
लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक जनरल परवेज मुशर्रफ के मौत की सजा को पलट दिया है। कोर्ट ने उस विशेष अदालत को ही असंवैधानिक करार दिया जिसने मुशर्रफ को सजा सुनाई थी। इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सज़ा सुनाई थी। 6 साल तक उनके खिलाफ देशद्रोह के हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई चली थी। ये मामला 2013 में तत्कालीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने दायर किया था। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक लाहौर उच्च न्यायालय ने मुशर्रफ के खिलाफ विशेष अदालत के गठन को असंवैधानिक करार दिया। और अब खबरें भारत से। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। केरल पहला राज्य बन गया है जिसने इस कानून को चुनौती दी है। केरल सरकार ने याचिका में कानून को भेदभाव वाला और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। केरल सरकार ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ये याचिका दाखिल की है। संविधान का अनुच्छेद 131 भारत सरकार और किसी भी राज्य के बीच किसी विवाद में सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकार देता है। अगर दोनों के बीच कोई कानून का सवाल या फिर कानून पर सीमा का अधिकार का मामला हो तब इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर विपक्ष की सोमवार को हुई बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष की एकजुटता का पर्दाफाश हो गया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की बैठक से समाजवादी पार्टी, बसपा, तृणमूल कांग्रेस और आप जैसे प्रमुख दल दूर रहे। उन्होंने कहा कि इस बैठक में पारित प्रस्ताव न तो देश हित में है और न ही रक्षा हित में। उन्होंने विपक्ष पर अनावश्यक रूप से इस प्रक्रिया में मोदी सरकार पर हमला करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि कांग्रेस समेत देश की 20 विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून को वापस लेने एवं राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि वो सभी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की प्रक्रिया को निलंबित करें जिन्होंने अपने राज्य में NRC लागू नहीं किए जाने की घोषणा की थी। विपक्षी दलों ने कहा कि CAA, NPR और NRC एक पैकेज है जो असंवैधानिक है। विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा।
Have the courage to speak to the youngsters in these universities and tell them why the Indian economy has become a disaster, why it has become a basket case and why we have the highest unemployment in 50 years. Unfortunately, the Prime Minister does not have the guts to do this. He does not have the guts to stand in front of the students of this country and tell them, so he crushes them using the police. I challenge the Prime Minister right now to go to any of the universities, stand over there without his police, without his infrastructure and tell the people what he's going to do for this country.
JNU में पिछले कई दिनों से नागरिकता संशोधन कानून और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच खबर है कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के साल 2019 के इम्तिहान में जिन 32 लोगों को चुना गया है उनमें से 18 JNU से हैं। इनमें से एक छात्रा हैं यशस्विनी सारस्वत, जिन्होंने देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया। उनकी इस उपलब्धि पर JNU उपकुलपति जगदीश कुमार ने उन्हें अपने ऑफिस में मिलने बुलाया।
आई थिंक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मिलने की, उनसे बात करने की, और काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने पूछा आगे का क्या प्लान है, और ही वॉज ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ अस।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को राज्य के विधानसभा में कहा था कि यहाँ कोई NRC लागू नहीं होगी। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर भी चर्चा करने की बात कही थी। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी ने संसद में नागरिकता संशोधन बिल का समर्थन किया था। इसके बाद अब BJP की ओर से बयान आया है। पार्टी के नेता संजय पासवान ने सोमवार को कहा कि अगर किन्हीं वजहों से बिहार में BJP और JDU गठबंधन नहीं चलता है तो हम लोग नया गठबंधन बनाने में नहीं हिचकिचाएंगे। जाहिर है इन बयानों के बाद अब बिहार चुनाव से पहले BJP और JDU गठबंधन को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर एक बार फिर नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कारण के लिए विपक्ष की एकता बहुत ज़रूरी होती है, इससे प्रदर्शन आसान हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि एकता न होने के बावजूद भी प्रदर्शन चलते रह सकते हैं। वहीं माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला ने भारत में उभरी इस स्थिति को दुखद करार दिया है। बज फीड को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह दुखद है, यह सिर्फ बुरा है। मुझे एक बांग्लादेशी अप्रवासी देखना पसंद आएगा जो भारत आता है और अपने सक्रिय योगदान से इन्फोसिस का अगला CEO बनता है। एक खबर यह भी है कि गूगल, ऊबर, अमेजोन और फेसबुक जैसे दिग्गज तकनीकी कंपनियों में कार्यरत 150 से अधिक भारतीय मूल के पेशेवरों ने पहली बार CAA और NRC के खिलाफ खुला पत्र लिखा है। अपने पत्र में इन दिग्गजों ने इन दोनों कानूनों को फांसीवादी करार दिया है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी मंगलवार को यह खबर लिखे जाने तक भारतीय रुपयों में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 48.73 रुपये थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 68 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। मेलबर्न में वायु प्रदूषण से ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के आयोजकों को अभ्यास सत्र निलंबित करने और क्वालिफाइंग टूर्नामेंट की शुरुआत को कुछ दिन और टालने पर मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि क्वालिफायर्स मुकाबले आज से शुरू होने वाले थे। टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वो धुएं की स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं और जाहिर तौर पर उनकी प्राथमिकता खिलाड़ियों, समर्थकों और कर्मचारियों की सुरक्षा है। बीते नवंबर में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच के दौरान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर नस्लीय टिप्पणी करने वाले शख्स पर किसी भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में ऑकलैंड के एक 28 साल के शख्स को आरोपी बनाया था, जिसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। और अब डालते हैं नज़र कल यानी बुधवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। खबर पर्थ से, पर्थ में कल दिन भर धूप रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में दिन उमस भरा रहेगा, हालांकि यहां छिटपुट बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 31 डिग्री, न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री जबकि न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में बादलों की आवाजाही रह सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। वहीं ब्रिस्बेन में आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में आंशिक तौर पर बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी नई दिल्ली में धूप रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 19 डिग्री, न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। खबरों में आज इतना ही।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।